Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhyaye Nityam Mahesam Rajatagirinibham Charu Chandra Vatansam ரத்னாகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவராஹமீதிஹஸ்தம் ப்ரஸன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணிர் வ்யக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகிலபயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரஞ்ச வ்யாசம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் வார்த்திகாரமன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்ததாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திஹி. சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம் நம சிவாய சிவாய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம்
ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம்
நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் ஹராய நம ஓம் நமோ ஹராய ஹராய நம ஓம்
ஹராய நம ஓம்
ஹராய நம ஓம் நமோ பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம்
பவாய நம ஓம்
பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் பவாய நம ஓம் நமோ பவாய பவாய நம ஓம்
பவாய நம ஓம்
பவாய நம ஓம் நமோ பவாய मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ
मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ
नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव
निरन्तरम्
स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद में चतुर्थ अध्याय के पंद्रहवें मंत्र की व्याख्या है। सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनत्ति घृतात्परं मण्डमिवाति सूक्ष्मम् ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वसैकं परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः यस देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर् न सन्न च सच्छिव एव केवलम् तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम्
तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम्
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी
प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी।
हाँ, तो बता रहे थे कि परमात्मा के दो स्वरूप हैं, दो लक्षण हैं परमात्मा को जानने के लिए। पहला लक्षण है स्वरूप लक्षण, दूसरा लक्षण है तटस्थ लक्षण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम। सत्य रूप कभी भी उसका बाद न होना पना, ज्ञान रूप हमेशा चैतन्य रूप, अनंतपना अर्थात अपरिच्छिन्न भाव या आनंद रूप और अद्वैत रूप, ये जो चार भाव हैं वो ब्रह्म के अपना निजी स्वरूप है। इसके अलावा ब्रह्म के बारे में जो ये कहा जाता है कि समस्त जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इस जगत की रक्षा वही करता है और इस संसार को अपने में लय भी करता है। जन्माद्यस्य यत या जन्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् सुकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानतव। एक गीता में जो श्लोक है ये सब तटस्थ लक्षण के बारे में कहा गया है, यानी किसी उपाधि को लेकर किसी का कारण आदि बनता है तब वह तटस्थ लक्षण वाला ब्रह्म है, और किसी उपाधि के बिना वह अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, उस स्वरूप में जो भाव है वह उस ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण के रूप में उस ब्रह्म को अनुभव कर न सकने वाले साधकों के लिए तटस्थ लक्षण का प्रतिपादन किया। मध्यम अधिकारी तटस्थ लक्षण के माध्यम से स्वरूप लक्षण को प्राप्त करता है, ये वेदांत की प्रक्रिया है, नियम है। इसी तरह ब्रह्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार संभव है। सएव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढ़। ये जो चार बात ब्रह्म के बारे में कही गई है, आत्मा के बारे में कही गई है, पहली बात है कि भुवनस्य गोप्ता, सृष्टिकाल या संहार काल में, सृष्टिकाल में कार्य रूप जगत की रक्षा करता है और संहार काल में कार्य रूप जगत की बीज की रक्षा करता है। इसे बीज की बात को लेकर कल विचार हुआ था, बीज क्या है, जीव क्या है, संस्कार विशिष्ट अंतकरण उपहित चैतन्य उसी को जीव कहते हैं। कर्ता भोक्ता भाव रूपी जो संस्कार, उस संस्कार से युक्त हुआ हुआ जो अंतकरण, अंतकरण में जो उपहित चैतन्य है, अवच्छिन्न चैतन्य है, प्रतिबिंबित चैतन्य है, उसको जीव कहते हैं। इसी तरह अलग अलग संस्कार से युक्त जो भौतिक तत्व है, पार्थिव तत्व है, उसको बीज कहते हैं। बीज की बीजता है संस्कार, इसी तरह जीव की जीवता है संस्कार। दोनों में कारण संस्कार है। जैसे बीज में अग्नि संयोग के द्वारा आग के साथ उसको थोड़ा सा संबंध करके उसको थोड़ा सा सेक दिया जाए तो उस बीज में से केवल विजत्व संस्कार नष्ट होते हैं, बाकी कुछ नहीं नष्ट होता। एक किलो किसी अनाज के बीज को हमने कल ये बात कही थी और स्पष्ट कर देते हैं प्रसंगगत। एक किलो किसी अनाज के बीज को जो किसान बीज के रूप में ग्रहण करता है, उसको किसी पात्र में किसी बर्तन में थोड़ा सा अग्नि संयोग कराकर थोड़ा सा तपा दिया जाए तो फिर वह जमीन में डालने पर अंकुरित नहीं होता। अंकुरित होने के जो कारण हैं, विशेष करके मिट्टी और जल का संयोग, किसी भी बीज को अंकुरित होने में यही दो ही कारण हैं। जमीन में पड़ने के बाद मिट्टी का और जल का संयोग हो जावे। हम देखते हैं वैदिक सनातन धर्म के अनुसार पौराणिक एक प्रसंग है। विशेष करके बाला चतुर्दशी बोलते हैं, ये शायद पूष महीना में आता है। तो वहां नेपाल के धर्म संस्कृति के अनुसार मंदिरों में, जंगलों में, शिवछत्र आदि पवित्र स्थलों में जाकर सप्तधान्य को वहां छिड़कते हैं। उनकी मान्यता है कि वह सुरक्षित बीज है, तो साल में एक बार वो करते हैं, सभी धान्यों सभी अनाजों को मिलाते हैं और जाके मंदिरों के चारों तरफ जंगल में छिड़कते हैं। तो उनकी मान्यता यह है कि वह सुरक्षित बीज है, जन्म जन्मांतर में वो प्राप्त होने वाला है वो। तो हम देखते हैं देवघाट में भी ऐसे तीर्थयात्री आते हैं, वो छिड़कते हैं। तो नीचे जो संगम है दो नदियों का, उसके बीच में जो रेती है, वहां पड़ा हुआ जो धान का अनाज का बीज है, वो 6-6 महीने तक जब तक बारिश नहीं होती है तब तक अंकुरित नहीं होता। बालुओं में, रेती में वो पड़ा रहता है और बंदर उसको खोजते हुए खाते रहते हैं। और उसके ऊपर जब मिट्टी का क्षेत्र है, जहां मिट्टी है वहां उसको छिड़क देते हैं तो वहां जल्दी से अंकुरित हो जाता है। तो किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए ये दो मुख्य कारण हैं, एक तो जमीन हो और दूसरे साथ साथ में उसके साथ पानी का संयोग हो तो वो जमीन नमी बने और वहां से वो तुरंत अंकुरित हो जावे। यदि उसको जरा सा भूंज कर डाल देते हैं तो चाहे जैसा भी नबी जमीन हो वो अंकुरित नहीं होगा। और यदि उसको भूंजते नहीं है तो उस बालू में भी हम देखते हैं 6 महीने के बाद जब चौमासा में बारिश होती है, पहले ये दूसरी बारिश हुई एक दो दिन तो फिर हफ्ते के बाद पूरा हरा हो जाता है वो बालू, क्योंकि पानी का संयोग हो गया, उसका कारण मिल गया उसको। कच्चे जो बीज हैं उसमें ये सारी संभावनाएं हैं। आपको एक और उदाहरण से इस बात को समझा दूं। जैसे कि किसी मैदान में धूल ही धूल है, अभी देखने जाओ गर्मी में, अभी तो चौमासा शुरू हो गया लेकिन 15-20 दिन पहले यदि देखने जाते तो धूल ही धूल होता। अब उस मिट्टी को, उस धूल को उठाकर लाकर यदि छन्नी से छान कर और खोजने की कोशिश की जाए कि उस धूल में, उस मिट्टी में कितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं, क्या क्या अनाज के, क्या क्या घास के बीज हैं, क्या हैं, तो मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा, मिट्टी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन ऐसे महीन धूल में भी तमाम वनस्पतियों के संस्कार विद्यमान है, बीजत्व है, ये कब पता चलता है? उसी धूल को जब हम पानी डाल देते हैं 2-3 दिन लगातार, तो फिर देख लो वहीं से सब हरा भरा निकल आता है। तो जिसमें हम ये पहले कह रहे हैं कि इसमें कोई कुछ नहीं है, धूल ही धूल है, न कोई घास है, न कोई वनस्पति है, न कोई अनाज है, उसमें यदि पानी डाल देते हैं तो वह सब फिर हरा होने लग जाता है। तो क्या वो जो हरियालीपना का कारण था, बीज था, वो पानी के माध्यम से आया कि उस धूल में पहले से ही विद्यमान है? उस धूल में पहले से ही विद्यमान है, केवल पानी की प्रतीक्षा करते थे वो धूल में रहने वाले बीज, उसी को बीज बोलते हैं। उसके बाद देखो तो सब पता चल जाएगा, जिस जिस संस्कार वाले बीज होंगे वो सब अपने अपने संस्कार से युक्त होकर अंकुरित होंगे, फिर उसके पल्लवित होंगे, फिर स्पष्ट वहां अलग अलग हो जाएगा कि ये कौन बीज है, कौन सा पौधा है, किस जाति का है, किस प्रकार का है, सब निकल जाते हैं। इसी प्रकार से संस्कारों से युक्त, वासनाओं से युक्त जो अंतःकरण है, वह अंतःकरण जब सूक्ष्म शरीर में सन्निहित रहता है, विद्यमान रहता है, और पुराण के भाषा में कहा जाए तो उस संस्कारों से युक्त जो सूक्ष्म शरीर आतिवाहिक शरीरों में घूमता रहता है, जब जैसे मिट्टी में रहा हुआ बीज पानी के संयोग से अंकुरित होता है, उसी तरह प्रारब्ध और वासना के संयोग से जब इसका स्थूल शरीर प्राप्त होता है, तब वहां वह प्रकट होता है, तब दिखाई पड़ता है कि ये मनुष्य जीव है, तब पता चलता है कि ये पशु जीव हैं, तब ये पता चलता है ये पक्षी जीव हैं, तब ये पता चलता है कि कीट पतंग जीव हैं, वो सब प्रकट हो गए हैं। और जब ये उपाधियां नहीं रहती, प्रकट नहीं होते हैं, तब फिर संस्कार के रूप में विद्यमान रहते, कब तक रहते हैं, तो उसके लिए कहा जब तक इसके मृत्यु का पास छिनत नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, तब तक वो रहेंगे, क्योंकि उनको ये सब संस्कारों को बांध कर रखने वाला कौन है, तो बोले मृत्यु का पास है, उसको बांधे रखता है। मृत्यु का अर्थ भाष्यकार ने अज्ञान कहा है, उस अविद्या ही उस बीजत्व संस्कार को रखता है। अब वो जब तक बीज नष्ट नहीं होगा, तब तक तो जीव भाव की निवृत्ति नहीं होगी, इसीलिए उस बीज को नष्ट करने का यानी संस्कार को नष्ट करने का उपाय क्या है? तो जैसे बीज के बीजत्व को नष्ट करने का उपाय है अग्नि संयोग, यानी थोड़ा सा उसको सेक देना, गर्म कर देना, उसी तरह जीव की जीवत्व नष्ट करने का उपाय है ज्ञात्वा, तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशात् छिनत्ति। ये सारी उपाय आगे बताने वाले हैं। सैव काले भुवनस्य गोप्ता, वही एक परमात्मा सृष्टि काल में और प्रलय काल में, सृष्टि काल में कार्य रूप जगत की रक्षा करता हुआ रहता है और प्रलय काल में कारण रूप संस्कारों को जीवत्व भाव आदि बीज की रक्षा करता हुआ रहता है। विश्वाधिपः, सारे विश्व का वही एक ही मालिक है, अधिपति है, अधिपः, ऐसा परमात्मा रहता कहां है? तो सर्वभूतेषु गुणः, वही जो संस्कार विशिष्ट जीव अंतःकरण उपाधि है, सूक्ष्म उपाधि हैं, उसी में ही वह सत्ता के रूप में रहता है। सर्वभूतेषु गुणः, इस बात पर किसी को प्रश्न हो सकता है कि वह सृष्टि कार्य रूप में व्यक्त हुआ हुआ अवस्था में तो कार्य रूप भूतों में वह अंतर्निहित होकर रह सकता है, लेकिन जब ये कार्य सब समाप्त हो जाते हैं, केवल संस्कार कारण मात्र रहता है, तब फिर उस अवस्था में ये कहना कि वह सर्वभूतेषु गुणः, वहां कोई प्राणी अलग रहेंगे नहीं, कोई भूत अलग रहेंगे नहीं, न पृथ्व्यादि पंचमहाभूत अलग रहेंगे, न गंधादि पंच तन्मात्राएं अलग रहेंगे, न पंचीकृत पंचमहाभूत का स्थूल कार्य रूप देह आदि स्थूल शरीर आदि कोई रहेगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भूत संज्ञा ये रहेगी नहीं, भूत संज्ञा ही नहीं रहेगा तो फिर सभी इन भूतों में वह छुपा हुआ रहता है, ये बात कैसे सिद्ध होगा? अभी तो आपका शरीर है, हमारा शरीर है, या तमाम शरीर ही शरीर है, वह परमात्मा किसी भी शरीर में छुपकर बैठ जाएगा,
लेकिन जब ये शरीर ही नहीं रहेंगे, पंच महाभूत भी नहीं रहेंगे और अपंचीकृत पंच महाभूत यानी गंधा आदि तन्मात्रा भी नहीं रहेंगे, अहंकार भी नहीं रहेगा, महत्त्व भी नहीं रहेगा और यहां तक कि समष्टि उपाधि भी नहीं रहने के कारण जीव भाव और ईश्वर भाव पृथक नहीं रहेंगे, तब फिर ये मंत्र की व्याख्या कैसे संभव होगा कि सर्वभूतेषु गुणः। इसका अर्थ यही है कि कार्य रूप विश्व में जितने भी भूत हैं उनमें तो छुपा हुआ रहता ही है, लेकिन इनका कारण को नाश होता है ये तो कहा नहीं गया है। महाप्रलय में ये कार्य रूप का नाश होता है, कारण रूप का नाश होता है ये तो नहीं कहा, इसलिए जो कारण रूप अवस्था है उसी का ही सत्ता के रूप में, उसके अस्तित्व के रूप में, उसके संस्कारों को रक्षा करते हुए, सुरक्षित रक्षा करते हुए उसी में रहते हैं, वो परमात्मा उसी में रहता है। यदि उन जीवों के संस्कारों का परमात्मा रक्षा न करे तो संस्कार बाधित हो जाएंगे, संस्कार खत्म हो जाएंगे और संस्कार खत्म हो जाएंगे तो फिर वो जीव भाव बाद में दोबारा होगा नहीं तो सृष्टि कैसे कर पाएंगे। इसलिए अलग अलग संस्कारों की अलग अलग उपाधि सूक्ष्म कारण उपाधि में उसकी रक्षा करते हुए उसी में सन्निहित रहते हैं, ये तटस्थ लक्षण है, हमको ये निश्चय करना है। सैव काले भुवनस्य गुप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः। गूढ़ शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ, गुह्य शब्द से गूढ़ शब्द बनता है छुपा हुआ, इसीलिए तो वह दिखता नहीं, इसीलिए तो उसका उसकी प्रतीति नहीं होती है। और छुपा हुआ है ये शब्द श्रुति ने प्रयोग किया, इसीलिए हमें उसका अनुसंधान करना चाहिए। यदि हम कहें कि वो अपने आप समय में प्रकट हो जाएगा और हमको दर्शन हो जाएगा तो ये नहीं होगा, तो हमको उसके दर्शन करने के लिए हमें अनुसंधान करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। उसी अनुसंधान का नाम ही है निधिध्यासन। जब तक आप निधिध्यासन नहीं करोगे तब तक वह अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करेगा। हालांकि कठोपनिषद में ये बात आई है, यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए ये बात स्पष्ट रूप में समझाया है। हाँ, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न एमे वेशा वृणुते न लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये कठक श्रुति है, इस श्रुति के आधार पर यही कहा गया है कि यह आत्मा तुम्हारे खोजने से मिलने वाला नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, ये दोनों श्रुति है। न मेधया, बुद्धि लगाकर खोजोगे तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बुद्धि के द्वारा खोजा जाने वाला नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुते न, वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्यों को बहुत बहुश्रुत होकर भी वो मिलने वाला नहीं है। कोई यदि कहे कि हमने अब 40 साल तक वेदांत सुना, अब तो ब्रह्म मिलना चाहिए, तो वो तुम्हारे 40 साल वेदांत सुन लेने के बाद ब्रह्म तो नहीं मिलेगा। जैसे कोई कर्मचारी कहता है कि एक महीना पूरा हो गया अब तो तनख्वाह मिलना चाहिए, तो हां उसको तनख्वाह मिल जाएगा। एक महीना यदि उसने काम किया तो समझौता के अनुसार उसको तनख्वाह मिल जाएगा, जितना कबूल किया है। वो कह सकता है कि एक महीना पूरा हो गया, एक महीने का परिश्रम मुझे दे दो, या सुबह से शाम तक दिहाड़ी में उसको काम में लगाया हो तो शाम को जब दिन पूरा हो गया तो वो कहेगा कि आज दिन पूरा हो गया, आज की दिहाड़ी दे दो, वो मिल जाएगा। लेकिन इसी तरह यदि कोई कहे कि हमने 40 साल तक वेदांत सुनी है, अब 40 साल पूरा हो गया, 50 साल तक सुनी है, 50 साल पूरा हो गया, अब तो परमात्मा को प्रकट होना ही चाहिए, तो ये काल के अंतर्गत वेदांत सुनोगे तो उस हिसाब से सुनोगे तो वो प्रकट होने वाला नहीं है। बहुना श्रुते न नायम आत्मा लभ्य, यदि तुम्हारी जन्म जन्मांतर के संस्कारें हैं तो वह एक ही बार श्रवण करने मात्र से भी उपलब्ध हो जाएगा। यदि तुम्हारी और बहिरंग साधन आदि की तैयारी नहीं है तब फिर बहुना श्रुतेना अपि न लभ्य। बहिरंग साधन क्या है? यम नियम आदि षट संपत्ति। ये जो षट संपत्ति है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक या मूत्र फल भोग विराग षट संपत्ति मुमुक्षुता इत्यादि, इन सारी साधनों से युक्त होकर यदि आपने श्रवण किया हुआ है तो एक ही बार श्रवण करने मात्र से भी वह उपलब्ध हो जाएगा। यहां तक के शास्त्र में यह प्रमाण आया हुआ है कि आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य, ये जो वाक्य का प्रयोग किया गया है कि आत्मा के सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, गुरुमुख से महावाक्य आदियों का श्रवण करना चाहिए, श्रवण के बाद मनन करना चाहिए, मनन के बाद निधिध्यासन करना चाहिए, तभी वह अपरोक्ष होगा, साक्षात्कार होगा। तब ये प्रश्न उठाया गया है कि वामदेव जी ऋषि को अपने मां के गर्भ में ही आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने कहां किस गुरु से तत्त्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण किया? तो उनको बिना श्रवण किए ही तत्व साक्षात्कार हो गया। तब फिर यह श्रुति ने यह नियम क्यों बनाया है कि आत्मा वारि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इस तरह का विचार हुआ है शास्त्र विचार करते समय में। ब्रह्मसूत्र में ये सब चर्चाएं आई है, इस तरह विचार किया गया। तब उसका यह उत्तर दिया है कि वह पूर्व आदि जन्मों में उसने वो सारी तैयारी की थी, आत्मा वारि श्रोतव्य, पहले जन्म में उसने अच्छी तरह श्रवण कर चुका था गुरुमुख के द्वारा महावाक्य आदियों का, श्रवण के बाद मनन भी किया हुआ था और निधिध्यासन कर ही रहा था कि निधिध्यासन परिपक्व होने से पूर्व उसका शरीर छूट गया, तो उस निधिध्यासन के क्रम में ही उसका शरीर छूटा हुआ होने के कारण उसकी एक थोड़ा सा लेस के चलते उसको पुनर्जन्म होना पड़ा, गर्भ में जाना पड़ा। गर्भ में जाते ही वह प्रतिबंधक दूर हो गया, उनको साक्षात्कार हो गया। इसीलिए पूर्व जन्म की यदि पूरी तैयारी है तो इस जन्म में तो बिना श्रवण का भी हो जाएगा, जैसे कि वामदेव को हुआ।